Riabai Obeno, Namobudai Jaibin. Kuch sawal ahe? Hey?
Pehla sawal hai, Buddha Trishna kya hai? What is Buddha Trishna? You use the word Buddha Trishna.
I don't remember using the word Buddha Trishna, but what I was talking about was the Trishna that drives you in the direction of the Dhamma, of the Buddha.
तो मुझे याद नहीं है कि मैंने बुद्ध तृष्णा यह शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यह तृष्णा ऐसी है जो बुद्ध की ओर आपको ले जाती है.
So I was thinking of the expression Kamachanda in relation to Dhammachanda.
तो मैं यह अभिव्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था कि कामछंद और धम्मछंद के बारे में.
So you could use Trishna instead of Chanda.
तो आप तृष्णा का इस्तेमाल कर सकते हैं छंद की जगह.
So you could talk about Dhamma Trishna, you could even talk about Buddha Trishna.
तो आप धम्म तृष्णा की बात कर सकते हैं, बुद्ध तृष्णा की बात कर सकते हैं.
So that would be the emotion, the energy that pulls you in the direction of the Buddha, pulls you in the direction of the Dhamma.
तो ऐसी ऊर्जा जो आपको बुद्ध की दिशा की ओर ले जाती है.
Which is the same as the Dhammachanda.
वो धम्मछंद के बराबर है.
And it's the same as Shraddha.
वही श्रद्धा के बारे में है.
And of course in the end it's connected with the Dhamma Niyama processes.
और अंततः यह धम्म नियमों के साथ जुड़ी है.
So it's that in you that feels drawn towards the Buddha.
और ऐसी भाव जो आपको बुद्ध की ओर ले जाती है.
So that was a simple question.
Can you tell us something about Arup Loka? Arup Loka ke bare mein aap kuch bata sakte hain?
Well, I can certainly talk about it in theory and a little bit from experience.
To nischit hi main siddhant ke bare mein baat kar sakta hu ya phir kuch thode bahut anubhav ke bare mein baat kar sakta hu.
So the rupa jhanas are of course what you experience when you let go of the hindrances.
तो रूप ध्यान वह है जब आप निवरणों को छोड़ देते हैं.
When you get rid of the hindrances, you enter the rupa dhyanas.
तो जब आप निवरणों को छोड़ देते हैं तो आप फिर रूप ध्यान में प्रवेश करते हैं.
And everybody knows what they are, I hope.
और मुझे यानी आशा है कि सब लोगों को यह पता होगे.
So if you extend those dhyanas further, well, you get to the arupa dhyanas.
तो जब इन ध्यान को आप आगे ले जाते हैं तब आप अरूप ध्यान में आते हैं.
So in short, the arupa dhyanas, the arupa lokas, are simply states of even more refined and subtle concentration.
तो अरूप लोक ध्यान जो है यह बहुत ही शुद्ध और तरल ऐसी ध्यान की अवस्था है.
So in the same line as the rupa dhyanas.
तो रूप ध्यान के ओर ही इसका रुख होता है या उधर ही यह बढ़ती है.
And well, they're called arupa. Meaning without form.
उन्हें अरूप कहते हैं क्योंकि इनका कोई रूप नहीं होता है.
Because in the rupa dhyanas there is a sense of I am here, there's something there.
रूप ध्यान में ऐसा होता है कि मैं यहाँ हूँ और कोई तो भी चीज वहाँ है.
But when you get into the arupa dhyanas, the arupa loka, that sense of a separation between what's out there and what's in here gets even more subtle.
तो जब हम अरूप ध्यान में जाते हैं तो यह जो फर्क है काफी तरल होता है या शुद्ध होता है.
And you know that the first of the arupa dhyanas is described as the sphere of infinite space.
और पहले अरूप ध्यान को जो असीम अंतरिक्ष है उसके बारे में बताया गया है.
So that's your experiences of space just stretching in all directions.
तो ऐसा आपका अनुभव होता है सभी दिशाओं में यह जो फैला हुआ अंतरिक्ष है वह.
But it's as if the space but without anything in it.
ऐसा अंतरिक्ष या ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं है.
You're getting right down into the basics of experience.
तो अनुभवों के बिल्कुल बुनियादी स्तर पर आप आते हैं.
So you're just experiencing expansion, space.
तो आप केवल जो फैलाव है उस फैलाव का अनुभव करते हैं.
Sometimes you can get that experience at least to some extent in the especially the fifth stage of the छह धातु चिंतन
तो कभी कभी पांचवे पांचवा जो चरण है छह धातुओं के चिंतन का वहां हम इसे अनुभव करते हैं.
The six element practice. You can get that sense of when you let go of your attachment to space, there's just space, vast space.
तो जब आप अपने आसक्ति को छोड़ देते हैं तो वहां केवल असीम अंतरिक्ष होता है.
And a very subtle, very beautiful experience.
और बहुत सुंदर ऐसा अनुभव होता है.
And then it's as if you realize that if space is infinite, then mind, which contains space, is infinite too.
तो अगर अंतरिक्ष असीम है तो जो मन है जिसको आप अनुभव करते हैं वह भी असीम है.
You just experience consciousness as infinite.
जो आपकी चेतना है उसे आप असीम महसूस करते हैं.
And so it goes on, more subtle still.
तो और यह आगे बढ़ती है सूक्ष्मता की ओर.
You experience that there's nothing you can identify, no thingness.
तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है जिससे हम हमारी पहचान कर सकते हैं.
You experience that you're neither perceiving nor are you not perceiving.
आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि आप कुछ आकलन कर रहे हैं या आप कुछ आकलन आप नहीं कर रहे हैं.
So you're going beyond all the basic structure of our ordinary experience.
तो हमारे सामान्य अनुभव की जो रचना है उसके परे हम जाते हैं.
So that's what they are, those jhanas.
तो यह ये ध्यान है.
They're technically still laukik, they're still worldly.
तांत्रिक रूप से अगर देखा जाए तो वे लौकिक है.
In other words, as soon as you stop making effort, you come back.
तो जैसे ही आप यानी प्रयास छोड़ देते हैं आप वापस आ जाते हैं.
And even though they're described as extremely lofty states, you may get some flavor of them in intensive meditation.
भले ये काफी यानी अच्छी अवस्थाएं बताते हैं लेकिन इसका अनुभव आपको अपने अनुभव में आ सकता है.
Usually we require quite a bit of stillness, quite a bit of concentration to reach that high.
हमें काफी स्थिरता और एकाग्रता लगती है उस अवस्था में जाने के लिए.
But you may have experienced even something of that, for instance, in the six element practice.
तो आप या आप छह धातुओं के अभ्यास में आप इसका अनुभव ले सकते हैं.
Or even in anapanasati, you become very concentrated.
या फिर anapanasati काफी एकाग्र होती है.
Of course, even the Maitri Vikas practice can take you into an experience of that kind.
मैत्री विकास जो ध्यान है यह भी आपको इस अनुभव में ले जा सकता है.
So these are all possibilities of the mind.
तो यह मन की संभावनाएं हैं.
When you become extremely concentrated and your mind is very, very subtle, you experience these sort of things.
तो जब आपका मन काफी एकाग्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है तो ऐसे चीजों का आप अनुभव करते हैं.
But of course you can read about these in, for instance, Bhante's talk on meditation.
तो आप इसको सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं भंते का जो ध्यान का जो प्रवचन है उसके बारे में.
So if you want to know more about them, you can read about them in those talks of Bhante, some of which have been translated into Hindi and Marathi.
तो इन प्रवचनों को आप सुन सकते हैं भंते के जहां उन्होंने इस अवस्थाओं की बात की है जो हिंदी और मराठी में भाषांतरित हुआ.
And there are some talks by Bhante on meditation which you can get from free Buddhist audio.
और भंते के कुछ प्रवचन है जो आपको फ्री बुद्धिस्ट ऑडियो से मिलते हैं.
But they will be in English.
लेकिन वो अंग्रेजी में होंगे.
But Bhante's English is very beautiful.
लेकिन भंते की अंग्रेजी जो है वो काफी सुंदर है.
And when he first went back to England, he still talked with a bit of an Indian accent.
तो जब वे वापस इंग्लैंड गए तो वो जो भारतीय अंग्रेजी होती है वैसे ही बात करते थे.
So you'll find it reasonably easy to understand.
तो आपको समझने के लिए आसान होगा. ब्रह्मांड निर्मिति के सर्वप्रथम वज्रासन की निर्मिति हुई और ब्रह्मांड का लय होगा तो आखिरी वज्रासन का लय होगा. कृपया स्पष्ट करें. When universe is created, the Vajrasana is created first, and when universe will be destroyed, the Vajrasana will be last. Please explain.
So if I say to you, my love is like a red, red rose, what do you understand?
अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरा जो प्यार है वह लाल गुलाब के जैसा है तो आप क्या समझते हैं?
Do you understand that she's got thorns?
क्या आप ऐसा समझते हैं कि उसको काटे लगे हैं?
Or that she's got petals which will fall off?
या उसके ऊपर पंखड़िया है जो गिर जाएगी?
It's a metaphor, rupak.
Rupak hai.
So this is what this is when you're saying that the Vajrasana is the first place to form.
तो यह पहली बात है कि वज्रासन जो है यह सबसे पहले निर्मित हुआ.
It you're not to take it scientifically.
उसे हमने बहुत वैज्ञानिक नहीं लेना चाहिए.
It's a poetic image.
तो यह यानी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है.
But we must be very careful not to take these sort of stories literally.
तो इन कहानियों को हमने यानी शब्दशः नहीं लेना चाहिए.
Otherwise it becomes a Buddhist equivalent of the Ram Setu.
तो
The Buddhist equivalent of Ram Setu.
तो ऐसा आप कह सकते हैं जैसे राम सेतु की एक कहानी है वैसे यह एक बौद्ध कहानी है.
Just as many people believe that Rama's bridge is still to be found under the water.
तो अभी भी लोग ऐसा मानते हैं कि राम का जो सेतु है वहाँ पानी के नीचे मिलेगा.
We think, oh, the universe began here.
तो हम सोचते हैं कि हाँ ब्रह्मांड शायद यहाँ से उत्पत्त हुआ.
But it's a metaphor.
लेकिन यह रूपक है.
And we really need to understand the difference between a fact and a metaphor.
तो हमने जो तथ्य है और जो रूपक है इसके बीच का अंतर जो है हमने करना चाहिए.
You know, many of you are very, very fond of ghazals and sher and so on.
आप लोगों को गजलें या शेर बहुत अच्छे लगते हैं.
Well, they're not talking literally.
अब वे शब्दशः नहीं कहते.
They're using images to communicate something.
वे यानी रूपक का इस्तेमाल करते हैं आपको कुछ संवादित करने के लिए.
So that's what this image of the Vajrasana is the first place to form.
तो वज्रासन एक ऐसी जगह है जहाँ पहली चीज कोई निर्माण हुई.
How would we say that in other words?
कैसे हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं?
We're saying really that this place, because it's where the Buddha gained enlightenment, is the most important place in the universe.
क्योंकि उस जगह पे बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की इसलिए सारे ब्रह्मांड में यह सबसे महत्वपूर्ण जगह है.
At least in our world.
कम से कम हमारी दुनिया में.
Because it's here for the first time that Buddhahood came.
तो यहाँ पहली बार बुद्धत्व यानी आया.
That's what we're really saying.
यह हम कहना चाहते हैं.
But it's a very, very significant point to be able to distinguish between an image or a metaphor, a rupak, and a fact.
लेकिन यह महत्वपूर्ण है इसको फर्क करना कि रूपक क्या होता है और तथ्य क्या होते हैं.
You know, take Krishna's flute.
जैसे आप कृष्ण की बांसुरी ले सकते हैं.
In Vrindavan.
वृंदावन में.
With all the gopis dancing.
सब गोपियों के नृत्य के साथ.
Well, you will not find Vrindavan anywhere.
अब वृंदावन कहीं नहीं है.
But although people believe that Vrindavan is a particular place in India.
लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि वृंदावन ऐसी कोई विशिष्ट जगह है भारत में.
But actually, it's a very beautiful image.
लेकिन वैसे देखा जाए तो यह सुंदर प्रतिमा है.
If you take it out of its religious context, it's a very beautiful image.
अगर आप इसे यानी धार्मिक पद्धति से लेते हैं तो एक सुंदर कल्पना है.
But because it's made into a fact, becomes literal, people will even kill to defend it.
अगर आप इसे बहुत ही शब्दशः लेंगे तो लोग उसका यानी बताते बताते उसका जो सार है उसको ही खत्म कर डालेंगे.
So it's really important for us to learn to distinguish between a metaphor, a poetic image, and a fact.
तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो काव्यात्मक तथ्य यानी रूपक होते हैं और जो तथ्य होते हैं उसमें हम अंतर कर पाए. हम सब लोग जो पूजा ले रहे हैं वह पूजा बहुत ही प्रेरणादायी लग रही है. प्रारंभिक नमन, त्रिरत्न नमन और बुद्धार्पण यह हम शिविर में पहली बार ग्रहण कर रहे हैं. यह पूजा हम हमारी ध्यान सराव में भी कर सकते हैं क्या? Every day we are doing puja under Bodhi tree. It's very inspiring. Bhantes threefold puja. Prarambhik naman.
Translated by Maitri Vyanagarjun. Beautifully translated by Maitri
Can we bring this puja in our practices, in our dhyan sadhana? In sadhanas?
Oh, undoubtedly.
Nisandeh.
It's I think a very useful, very good puja for us to do ourselves.
यह बहुत सुंदर पूजा है हमें स्वयं करने के लिए.
Because it's very straightforward.
क्योंकि यह बहुत सीधी और सरल है.
It just talks about the basic facts of the Dhamma life.
यह धम्म के जो मूलभूत तथ्य है उसके बारे में बताती है.
And personally, I think it'd be very good to use in our classes as well.
और यह बहुत अच्छा होगा अगर हम इसे अपने वर्गों में इस्तेमाल करते हैं.
Because many people they just can't understand who are all these bodhisattvas, what's all this, what's all that.
तो काफी लोग समझ नहीं पाते कि बोधिसत्व क्या है, यह क्या है, वो क्या है.
But you can understand the Buddha was born as we are born.
तो आप समझ सकते हैं कि इस बात को कि बुद्ध जन्मे मानव रूप में जैसे हम जन्मे.
So I think very very good to use that puja in your own personal practice, and I think it would be good to use it in classes and so on.
तो यह बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे अपने ध्यान में या साधना में लेते या आप अपने क्लासेस में या धम्म वर्ग में लेते.
Bhante wrote it I think in 1977 or 78
में या 78 में बंते ने इस पूजा को लिखी.
And he wrote it because he thought that for many people the sevenfold puja involved too many ideas with which they were not familiar.
तो उन्होंने ऐसे सोचा कि जो सप्तांग पूजा है उसमें काफी बातें हैं जो लोगों से परिचित नहीं है.
And in the west at that time anyway many western people were very cautious about puja.
और उस वक्त पश्चिम जगत में लोग पूजा के बारे में काफी यानी संवेदनशील थे.
It reminded them too much of their old Christian services.
तो जो पुराने जो यानी ईसाई जो पूजाएं होती थी उसकी वह याद उन्हें दिलाती थी.
So that the words of this basic puja are much more direct.
तो यहाँ पे इस पूजा में जो शब्द है यह काफी स्पष्ट है.
So it's a very good way of introducing people to the puja as we do it.
तो यह बहुत अच्छा तरीका है लोगों को पूजा का यानी परिचय देना.
And I think it's also useful to use it because so often what we do is Pali puja.
और यह अच्छा होगा इसका इस्तेमाल करना क्योंकि अक्सर हम पाली पूजा करते हैं.
But most people don't really know what it means.
लेकिन काफी लोग उसका वाकई में अर्थ क्या है यह नहीं जानते.
Yes, you can recognize from Hindi and Marathi some of the Pali words. Huh?
आप हिंदी मराठी में कुछ शब्द पहचान सकते हैं.
But we do it in contexts where people don't know anything.
लेकिन हम उस परिपेक्ष में या उस संदर्भ में करते हैं जहां लोगों को उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता.
And much better to do something in people's own language.
और यह अच्छा है लोगों की अपनी भाषाओं में पूजाएं हों.
And especially when the words express such simple, basic, dhammic ideas.
और ऐसे शब्द जो काफी मूलभूत सरल और गहरे धम्म के तथ्यों को बताते हैं.
And we're very fortunate that Maitri Veer has done such a beautiful translation.
और हम बहुत भाग्यशाली है कि मैत्रीवर ने इसका जो भाषांतर किया है बहुत सुंदरता से किया है.
Yes, he did translate it properly. It's really, really good that we've got it in language that moves.
तो यह अच्छी बात है कि हम इस भाषा में उसे किया है जो हमें प्रेरित करती है.
So I do strongly suggest that we use it much more.
तो मैं आपको प्रबलता से यही सुझाव दूंगा कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए. बुद्ध ने मृत्युहीनता के द्वार खोले हैं, यह अभ्यास बहुत नया लगता है. फिर से स्पष्टीकरण करेंगे तो समझ में आएगा. बुद्धा ओपन द डोर्स ऑफ डेथलेसनेस. दिस स्टडी इज क्वाइट न्यू फॉर अस, सो इफ यू कैन एक्सप्लेन बिट मोर दैट विल बी हेल्पफुल.
यस, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज a little bit difficult.
तो मैं समझ सकता हूँ कि यह थोड़ा कठिन क्यों है.
And it's difficult for me to say more.
और इसके बारे में मुझे अधिक कहना भी मुश्किल है.
Because you've got to listen with the right ears.
क्योंकि आपको इसे सही कानों से यानी सुनना है, सही कानों से इसे सुनना है.
In a way you've got to listen with poetic ears.
आपको इसे यानी काव्यात्मक कानों से सुनना है.
You mustn't again take it too literally.
फिर से आपने इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए.
So many of these deep themes in the Dhamma, if you listen to them in the wrong way, you just get yourself very confused.
ऐसे कई गहरे शब्द होते हैं धम्म में, अगर आपने उसे गलत सुना तो हम संभ्रमित हो जाते हैं।
So I'll try and I hope I don't confuse you more.
तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं अधिक आपको संभ्रमित नहीं करूंगा।
If you find yourself erased, just press, sorry, if you find yourself confused, press the erase button.
तो अगर आपको कहीं संभ्रमित हो रहा है तो आप उसे भूल जाइए, मिटा दीजिए।
So you just forget what I've said.
तो मैंने जो कहा उसे आप भूल सकते हैं।
In fact, probably better to forget it before I've even said it.
तो पहले ही आप भूल जाइए इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ।
So, well, when we say I will die,
जैसे आप कहते हैं कि मेरी मृत्यु होगी।
So who is this I that dies?
तो ऐसा मैं कहाँ है जिसकी मृत्यु होगी?
Of course, it's my body.
निश्चित ही यह मेरा शरीर है।
But in a more complex way, it's my idea of myself.
अगर अधिक क्लिष्टता से अगर हम इसे देखते हैं, तो यह मेरी मैं की कल्पना है।
I think of myself in terms of my body.
मैं अपने बारे में मेरे शरीर के माध्यम से सोचता हूँ।
I think of myself in terms of my emotions.
मैं मेरे बारे में मेरे भावनाओं के द्वारा सोचता हूँ।
I think of myself in terms of my thoughts.
मैं मेरे बारे में मेरे विचारों के जरिए सोचता हूँ।
I think of myself in terms of my will, my volition.
मैं अपने आप के बारे में मेरी इच्छाओं के बारे में सोचता हूँ।
I think of myself in terms of my mental states.
मेरी जो मानसिक स्थितियाँ है उसके द्वारा मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ।
So when the body breaks down, all that breaks down.
तो जब शरीर नष्ट होता है तो यह सारी चीजें नष्ट होती है।
It was born, so it will die.
तो इसका जन्म हुआ तो इसका यानी मृत्यु निश्चित है।
But consciousness itself is not really involved in that.
लेकिन अपने आप में जो चेतना है इसका इसमें समावेश नहीं है।
I think of it as fully involved with all of that.
मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह इसमें पूरी तरह सम्मिलित है।
But consciousness itself is neither born nor created, nor destroyed.
लेकिन चेतना अपने आप में ना इसका जन्म हुआ है ना यह नष्ट हुई है।
This is difficult because it can be easily misunderstood.
यह कठिन है क्योंकि यह आसानी से इसकी गलत फहमी हो सकती है।
So for instance, the Buddha was asked what happens to you after death.
तो बुद्ध ने बुद्ध को पूछा गया कि आपको मृत्यु के पश्चात क्या हुआ?
Do you exist after death or do you not exist?
क्या आप मृत्यु के पश्चात अस्तित्व में है या नहीं है?
And the Buddha said, well, you can't think of it like that. You can't think of it in either of those terms.
तो बुद्ध ने कहा इन दोनों माध्यमों में इसे सोचना उचित नहीं।
Because you can only think of existence and non-existence in terms of conditioned things.
क्योंकि अस्तित्व और अनास्तित्व जो अस्तित्व में नहीं है उसको आप केवल संस्कारिता में ही सोचते हैं।
So if you've stopped identifying with conditioned things, well, what is left?
तो अगर आपने संस्कारिता से अगर इसकी पहचान की है तो फिर क्या बचता है?
Well, you could say there's just consciousness.
तो वहाँ केवल चेतना बचती है।
But you need to be careful that you don't think of consciousness as a thing.
लेकिन आपने इस बारे में यानी सावध रहने चाहिए या होने चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि चेतना वस्तु नहीं है।
Because consciousness is empty too.
क्योंकि चेतना भी शून्य है।
But so that consciousness that is no longer identified with the conditioned elements or skandhas is not subject to birth and death.
लेकिन चेतना जिसका स्कंदों के साथ कोई संबंध नहीं है या संस्कारिता से कोई संबंध नहीं है वह मृत्यु या जन्म का विषय नहीं है।
But it's not an atman.
लेकिन वह आत्मा नहीं है।
So if that's confusing, erase.
तो अगर यह संभ्रमित कर रहा है तो आप इसे भूल जाइए।
And maybe it's the sort of thing that we need to wait until later when we're really deeply in meditation to reflect upon.
तो बाद के कुछ समय में हमने अधिक चिंतन करना चाहिए जब हमारी ध्यान साधना आगे बढ़ती है।
But you can get some sense of it in the six element practice.
लेकिन इसका कुछ भाव आपको छह धातुओं के ध्यान में मिलता है।
If you're successful in the six element practice, you let go of your attachment to each of the elements.
अगर आप छह धातुओं के ध्यान में कामयाब है तो आप सभी छह धातुओं को छोड़ देते हैं।
And when you've let go of those elements, well, what is left?
अगर यह धातु चले गए तो फिर क्या बचता है?
दिस जस्ट अवेयरनेस,
वहां केवल जागृति है।
इट्स नॉट माय अवेयरनेस, नॉट योर अवेयरनेस।
यह मेरी जागृति नहीं है, यह आपकी जागृति नहीं है।
इट्स जस्ट अवेयरनेस, अनकंडीशनड अवेयरनेस।
यह असंस्कारित जागरूकता है।
एंड वेल दैट इज द डेथलेस,
और वह मृत्युहीनता है।
इफ यू कैन रियली एक्सपीरियंस दैट फुली एंड डीपली, That's the deathless.
अगर आप इसे पूरी तरह अनुभव करते हैं तो यह मृत्युहीनता है।
Now there are problems in the way I've expressed that.
अब इसमें समस्या है जिस तरीके से मैंने इसे अभिव्यक्त किया।
But maybe for the time being that's good enough. That's clear enough.
लेकिन शायद यहाँ तक यह स्पष्ट है।
The danger is that we start thinking of consciousness as a sort of Atman.
खतरा वह यह है कि हम चेतना को आत्मा से मिला देते हैं, जोड़ते हैं।
But as long as we don't do that, what I've said is enough.
लेकिन जितना मैंने कहा है उतना शायद पर्याप्त है।
I can see quite a number of puzzled looking faces.
मैं अभी कुछ संभ्रमित चेहरे देखता हूँ।
Never mind.
इससे फर्क नहीं पड़ता।
Later, maybe that will become clearer.
शायद बाद में यह स्पष्ट होगा।
But the point is that what is not conditioned is not subject to birth and death.
लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि जो असंस्कारित है या जो संस्कारित नहीं है वह मृत्यु और जन्म का विषय नहीं है।
And nirvana is not subject to birth and death.
और जो निर्वाण है इसका भी जन्म और मृत्यु से संबंध नहीं है।
Because it's unconditioned.
क्योंकि वह असंस्कारित है।
Yes, we arrive at it through a process of conditions.
निश्चित ही संस्कारिता के माध्यम से या परिस्थिति सापेक्षता के नियम से हम वहाँ जाते हैं।
Our realization of it is conditioned.
उसका जो साक्षात्कार है यह संस्कारिता से आता है।
But itself, it's not conditioned.
लेकिन यह अपने आप में संस्कारित नहीं।
So if you don't understand, well, just leave it at that.
अगर यह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए।
And you'll need to reflect much more deeply.
और इसे आपको अधिक गहराई से आपने यानी इसका चिंतन करना।
You could take it as what the Chinese and Japanese tradition calls a kung an or koan.
तो जो जापानीज और चाइनीज परंपराएं बताती है कुन आन उसके बारे में मैं बताता हूँ।
Or koan in Japanese.
या जापान में उसे koan कहते हैं।
So it's a sort of puzzle.
तो यह संभ्रमितता है।
Something that is not easy to understand with your intellect.
आपके बुद्धिमत्ता से उसे समझना कठिन होता है।
And you just stay with that puzzlement.
और आप केवल उस संभ्रमितता से रुके रहते हैं।
So just stay with the word deathless.
तो जो मृत्युहीनता है बस उसके साथ आप रुकिए।
What does deathless mean?
क्या मृत्युहीनता होती है?
I've given you a lot of words to explain it.
मैंने काफी शब्द दिए इसे विश्लेषित करने के लिए।
But in the end, an explanation is not of any great value.
अंततः जो विश्लेषण है वह उसका मूल्य नहीं है।
You have to realize it.
आपको उसे जानना है। अगर 20 या 30 मिनट चिकोंग के लिए है तो कौन सा अभ्यास ज्यादा अच्छा है? If you are 20 to 30 minutes to do Qigong, what will you suggest? With gesture, which posture you will suggest to do 20-30 minutes Qigong?
It's important to warm up.
यह महत्वपूर्ण है कि हम पहले वार्म अप करें।
It's very good to do some of the 8 strands of brocade.
और जो 8
pieces of brocade, yeah.
8 व्यायाम जो करते हैं उसमें से हम कुछ व्यायाम करने चाहिए।
You know that one of those 8.
वो जो 8 व्यायाम है वह।
What you could do is one each day.
कम से कम एक व्यायाम आप हर रोज कर सकते हैं।
And do it 30 times.
और 30 बार कीजिए।
That's what Master Lam told Srimala Dhammashalin and I.
तो वही Master Lam ने श्रीमाला धर्मशालिन और मुझे बताया।
So every day just do 30 of one of those, and the next day the next one 30 times.
तो 30 बार हर एक दिन 30 बार एक अभ्यास कीजिए।
And when you've done all 8. Do over 8 days, then on the 9th day, do all 8.
तो जब आप नौवे दिन करते हैं तो सभी आठ व्यायाम आप कीजिए.
And then to the cowboy position.
फिर जो ऐसा हम खड़े रहते हैं cowboy position जिसे कहते हैं आप वो कीजिए.
It's very very important posture.
वो बहुत महत्वपूर्ण यानी व्यायाम है.
And probably good just to do that for 10 minutes every day.
और 10 मिनट आपने इसे करना चाहिए.
If you've still got some time, you can do one of the postures, etc.
तो जो अलग अलग धातु के जो होते हैं वो आप कर सकते हैं.
Just do one of them for a good period, at least 3 minutes, I think our teacher Stephen said.
कम से कम 3 मिनट तक हमने इसे करना चाहिए जो स्टीवन ने बताया.
But concentrate on just the cowboy position, standing.
लेकिन जो ऐसे खड़े रहते हैं हम cowboy अवस्था में वो कीजिए.
So warm up a little bit of the 8 strands.
वार्म अप कीजिए आठ अभ्यासों में से कुछ एक कीजिए.
And then the cowboy.
और फिर वो cowboy की पोजीशन.
If you've got some time left, then do one or other of the positions. Probably this one is the best.
वो जो metal जिसे कहते ये वाली जो परिस्थिति है व्यायाम है उसे वो अच्छी.
When I first started doing qigong, I did that every day for 20 minutes for about 4 years.
4 साल तक जब मैंने यह सीखना शुरू किया तो मैंने यह जो व्यायाम है उसे किया.
And I'm still alive.
यस अमृत चित्र का सवाल है, यदि वेदना से तृष्णा की उपज है तो वेदना 108 प्रकार की क्यों नहीं है? क्या पूछना चाहते हैं आप? क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, सो आई एम आस्किंग.
जस्ट ट्रांसलेट इट.
इफ तृष्णा अराइजेस डिपेंडेंट ऑन वेदना, so why not vedna is of 108 type?
One of 8 types.
108 exawatt. 108. Why vedna is not of 108 type?
Yes, I don't altogether understand the question, but there's something that I can draw from it.
तो मैं इस प्रश्न को पूरी तरह समझ नहीं पाया लेकिन मैं कुछ तो भी आपको इससे बता सकता हूँ.
The Buddha in the suttas distinguishes between 2 different kinds of vedana.
बुद्ध सूत्रों में 2 प्रकार की वेदनाओं को बताते हैं.
There's samisa vedana and niramisa vedana.
Samisa vedana और niramisa vedana.
That is veg and non-veg, non-veg and veg.
शाका मांसाहारी और शाकाहारी.
It literally means worldly and non-worldly.
जिसे हम लौकिक और अलौकिक.
हाँ.
जिसे हम.
No. Because that suggests transcendental, doesn't it? Or to do with samsara and not
samsara.
Yeah.
तो दो वेदनाएं ऐसी हैं जो सांसारिक है और असंसारिक है.
And well, obviously, many sensuous experiences very easily turn into craving.
और काफी जो शारीरिक या इंद्रियजन्य जो संवेदना है वह तृष्णा की ओर जाती है.
Let's take a simple and common example.
एक सीधा सा और सामान्य उदाहरण हम लेते हैं.
गुलाब जामुन. Or chocolate, if you're English.
अगर आप अंग्रेज हैं तो फिर चॉकलेट.
If you or Scottish or anything else, but if you eat a gulab jamun, very quickly you want another.
तो अगर आप गुलाब जामुन खाते हैं तो तुरंत ही आपको दूसरा चाहिए होता है.
If you have chocolate, you want some more.
अगर आपके पास चॉकलेट है, आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको और चॉकलेट चाहिए.
So that the vedana that's connected with gulab jamun and chocolate is what's called samisa vedana.
तो जो गुलाब जामुन या चॉकलेट से वेदना जुड़ी है उसे समिसा वेदना कहते हैं.
But the for instance the pleasure that you experience in meditation is niramisa.
लेकिन ध्यान में जो हमें अनुभव आते हैं वह निरामिसा है.
you don't want more in the sense of holding on to it.
आपको अधिक नहीं चाहिए इसको पकड़ के रखने के लिए.
Yes, you enjoy it, but without attachment.
आप इसका आनंद लेते हैं लेकिन अनासक्त होकर.
Well, like the pleasure of friendship.
जैसे मित्रता का अनुभव.
It doesn't make you want to cling to the friend if it's genuine friendship.
तो अगर वाकई में सच्ची मित्रता है तो हम उसे आसक्त नहीं रहते.
Two individuals quite free.
दो जो व्यक्ति है वह मुक्त होते.
So I won't say very much more than that. Yes, but there are two different kinds of vedana.
लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन दो प्रकार की अलग अलग वेदनाएं हैं.
So I don't know about the 108.
तो अब 108 प्रकार की वेदनाओं के बारे में मैं नहीं जानता.
That sounds like a different subject.
वह मुझे लगता है दूसरा विषय है. बोधि वृक्षा ने बुद्धांना खेचून आणले का कि बुद्ध चाले. बोधि वृक्ष बद्दल स्पष्टीकरण करावे.
Is that Vajratara?
No,
that's not.
This is from different order member.
Okay. Boliye.
Did tree draw the Buddha or Buddha himself came? Please explain about tree.
Did the tree draw the Buddha or did the Buddha himself come?
Yeah.
Interesting. Yes, well, I suppose it depends what you mean by draw.
अब ये इस पे यह निर्भर करेगा कि जिसे खींच कर ले आना कहते हैं हम, मैं खींच कर चला गया, खींचा चला गया, इस पे निर्भर करता है उसका अर्थ क्या है.
But what we hear is that the Buddha saw the tree and thought this is a suitable place for striving.
बुद्ध ने यह देखा कि यह उचित स्थान है मेरे प्रयासों के लिए.
So in that sense, yes, the tree did draw him.
तो उस दृष्टिकोण से यानी पेड़ ने उन्हें पेड़ उन्हें खींच ले आया.
It's a bit distracting for the audience, yeah. Yes, so you could say in that sense that the tree drew the Buddha.
तो उस भाव से आप कह सकते हैं कि पेड़ उन्हें उनकी ओर खींच ले आया.
But of course the Buddha was looking for somewhere to strive.
लेकिन बुद्ध देख रहे थे कहीं तो भी यानी अपने प्रयास करने के लिए.
So that's the most I can make out of that question. I don't know whether the questioner had anything more in mind, but maybe
that's enough. बस यही मैं कह सकता हूँ इस सवाल के बारे में.
Maybe you have the experience yourself of being drawn by the tree.
आपका अपना अनुभव होगा आप किसी पेड़ की ओर खींचे चले जाते हैं.
Maybe you have the experience of the tree sort of pulling you towards it.
या कभी कभी आपको ऐसा अनुभव आता है कि पेड़ आपकी ओर खींच रहा है.
I've experienced that myself.
मैंने स्वयं इसका अनुभव लिया.
I just feel I have to go there.
मुझे ऐसे लगता है मुझे वहाँ जाना ही है.
I know sometimes I've been at Bodh Gaya and I've started off going every morning down to the Bodhi tree.
मैं हर रोज बोधि ट्री के नीचे जाता हूँ हर शाम को.
But then after some days I think, oh, okay, let me sleep.
या कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए.
But the Bodhi tree is calling me.
लेकिन बोधि वृक्ष जो है मुझे बुलाता है.
It asks me to come, it calls me to come.
मुझे यह बुलाता है, मुझे यह पुकारता है.
So maybe in that sense one could speak of the Bodhi tree drawing one.
इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि बोधि वृक्ष आपको खींच रहा है. You describe bringing to mind being under Bodhi tree. Tree in our sadhana practice. I also bring to mind being with the order under Bodhi. Bodhi tree. Could you say something about the significance of the order under the tree? आपने यह विश्लेषित किया कि अपने मन को बोधि वृक्ष के तले आप लाइए और अपने साधनाओं को साधना को साधना में बोधि वृक्ष को लाइए. मैंने भी यह प्रयास किया कि आप अधिक कह सकते हैं संघ के बारे में बोधि वृक्ष के तले.
But what is the order?
अब संघ क्या है?
It's a community of men and women who take the Buddha as their ideal.
तो यह वह स्त्री और पुरुष है जो बुद्ध को आदर्श मानते हैं.
And we're united by our going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
बुद्ध धम्म संघ के प्रति हम हमारा शरण गमन करके हम एक हैं.
And you could say that the center even of Buddha, Dhamma, and Sangha is that place under the Bodhi tree.
और आप ऐसा भी कह सकते हैं आपका वह केंद्र स्थान है आप जब बोधि वृक्ष के नीचे होते.
It's under the Bodhi tree that enlightenment was first discovered in this world.
इस दुनिया में पहली बार संबोधि उस वृक्ष के तले उत्पन्न हुई.
So it's when we're under the tree that we're most members of the order, you could say.
तो जब हम उस वृक्ष के तले होते हैं तब हम वाकई में सही संघ सदस्य होते हैं.
We're most united.
हम अधिक एक होते इकट्ठा होते.
Everybody knows how we can be disunited.
हर व्यक्ति जानता है कि हम कैसे बिखरे हुए हैं या विभाजित हैं.
Everybody experiences it in their own center, in their own chapter, etc., etc.
आपके केंद्र में आपके चैप्टर में आप कैसे विभाजित है यह जानते हैं.
But
आप अनुभव करते हैं.
But when we all come together under the Bodhi tree, all that goes.
लेकिन जब आप बोधि वृक्ष के तले आते हैं तब आप वह सब चला जाता है.
And we're just brothers and sisters in the Sangha.
हम केवल संघ में भाई बहन होते हैं.
I remember Bhante explaining Sami Chapatipano Bhagavato Sarvaka Sangho.
मुझे अभी याद आता है जब भंते ने इस बात का विश्लेषण किया था सामीची पटिपन्नो सावक संघो.
He gives a different explanation to the one that is normally given of सामी चपटिपन्नो.
अक्सर जो विश्लेषण दिया जाता है उससे हटकर भंते ने जवाब दिया था सामीची पटिपन्नो का.
He says it's harmoniously proceeding.
उन्होंने ऐसा कहा कि सुसंवादिकता से जो आगे कूच करता है वह
गोइंग अलोंग हार्मोनियसली टुगेदर
एक दूसरे के साथ सुसंवादित होकर हम आगे जाते हैं.
एंड ही एक्सप्लेन दैट इन टर्म्स ऑफ अस बीइंग यूनाइटेड इन अ कॉमन आइडियल.
और हम इसे एक आदर्श में उसकी एकता के बारे में हम उसे पहचानते हैं.
व्हेन वी आर ऑल फेसिंग दैट कॉमन आइडियल वी फॉरगेट आवर डिफरेंसेस.
जब हम उस एक आदर्श की ओर देखते हैं तो हम हमारे जो फर्क है या मतांतर है उसे भूल जाते हैं.
एंड वी जस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गोइंग फॉर रेफ्यूज टू द बुद्धा धम्म एंड संघ.
हम केवल भाई बहन होते हैं बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरण जाने के लिए.
एंड द मोर वी आर अवेयर ऑफ दैट द मोर हार्मोनियस वी विल बी.
जितना हम उसके बारे में सजग होते हैं उतने ही हम सुसंवादित होते हैं.
And that doesn't need to exclude differences or even criticism.
और यह फर्क नहीं करेगा या उसमें आपकी आलोचनाएं नहीं है ऐसा नहीं है.
But we're aware of what unites us much more than what divides us.
तो हम इस बारे में अधिक सजग होते हैं जो बात हमें एकता में लाती है बजाय के विभाजितता में.
And of course the Bodhi tree is the great symbol of the ideal which we all share.
और बोधि वृक्ष यह एक ऐसा प्रतीकात्मक आदर्श है जो हम सब लोग अपने अनुभव में बांटते हैं.
The Vajrasana is where our unity comes from.
वज्रासन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारी एकता आती है.
So I don't know whether that's what Vajratara had in mind. I'm sure she could give an even more grand answer than I could.
तो मुझे नहीं पता कि शायद यह उसके मन में है या वह उसका और अधिक जवाब दे सकती है.
But I think that's the essence of it.
लेकिन यह उसका सार है.
And perhaps what follows from this point is that if we could remember the experience under the Bodhi tree much more of the time, we would be much less divided.
तो जितना ज्यादा हम बोधि वृक्ष के नीचे एकता का अनुभव करते हैं उतने ही कम हम विभाजित होंगे.
Actually, the order in India is very harmonious.
वैसे देखा जाए तो भारत का जो संघ है यह काफी सुसंवादित है.
Our only problem is that we focus too much on the disharmony.
हमारी समस्या यह है कि हमें क्या नहीं पड़ता या कौन सी बात विभाजित है उस पर हम ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं.
What are the organization, or if you like, institution, community, that has followed on from Dr. Ambedkar, has remained united for so long?
Sorry, I didn't get that. What?
What other organization is there that has been united for so long?
कौन से ऐसे अन्य यानी बाबा साहब के पश्चात आंदोलन रहे हैं जो काफी देर तक एकता में रहे हैं?
How many RPIs are there?
अब आप देखिए आरपीआई जो है उसके कितने गुट है.
Republican Party of India, there's so many factions.
कितने उनके गुट है?
And they'll field candidates against each other.
और एक दूसरे के विरोध में वो अपना यानी जो नेता है वो खड़ा करते हैं.
How many Bharatiya Baudha Mahasabhas?
कितने भारतीय बौद्ध महासभा है?
But there's one Trilokya Baudha Sangha.
लेकिन एक ही त्रिरत्न बौद्ध संघ है.
Yes, Tri Ratna, you're right. No longer Tri Ratna. Didn't translate me properly. That's because I think the ideal is very strong for us all.
क्योंकि इसका कारण यह है हमारे लिए जो आदर्श है यह काफी मजबूत है.
And there's a very strong faith amongst us.
और हम सब लोगों में प्रबल श्रद्धा है.
But it could be so much stronger.
लेकिन यह अधिक प्रबल हो सकती है.
And yes, if we reflected on the Bodhi tree and experienced ourselves, so to speak, imaginatively under the Bodhi tree together, we'd be even more harmonious.
तो अगर हमने बोधि वृक्ष के तले इसका चिंतन किया और अधिक उसको केंद्रित किया तो हम और अधिक सुसंवादित हो सकते हैं.
Look how harmoniously we've gathered here.
अब आप देखिए यह कितना अच्छा अनुभव रहा हमारे इकट्ठा आने का.
Internationally.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर.
Because we all gather under the Bodhi tree.
क्योंकि हम सब लोग बोधि वृक्ष के तले आए.
So yes, it would be a very useful practice to reflect on everybody together under the Bodhi tree.
तो यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण चिंतन होगा अगर हम बोधि वृक्ष के तले इसका अनुभव करते हैं.
Certainly a very, very important aspect of our meeting here.
यहाँ इकट्ठा मिलने का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है.
While we're together down there, we're very aware of being order members together.
जब हम वहाँ होते हैं तो हम काफी सजग होते हैं हम धर्मचारी या धर्मचारिणी है.
So Vajratara's question reminds us that that's something we can carry away with us too.
तो वज्रतारा का सवाल हमें यह बताता है कि यह बात हमने आगे ले जानी चाहिए.
When you meet in your order meeting, you can reflect on that.
तो जब आप अपने संघ भेंटों में या अपने वहाँ मिलते हैं तो आप इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं.
I think final question. Yeah.
संबोधि एकाच वेळी प्राप्त होत नाही याबद्दल थोडं आणखी विश्लेषण हवं. वी डोंट अटेन एनलाइटनमेंट ऍट वन्स ऑर ऍट वन पॉइंट. प्लीज एक्सप्लेन.
Well, there's a gradual approach to enlightenment, you could say.
ऐसा आप कह सकते हैं कि संबोधि के लिए हमारी हमारी जो बढ़ोतरी है वह धीरे धीरे होती है पायदानों में होती है.
First of all, you have a distant glimpse of enlightenment.
आपको दूर से संबोधि की एक झलक मिलती है.
In a way, we've all got some enlightenment even now.
वैसे देखा जाए तो हम सब लोगों को अभी थोड़ी सी संबोधि मिली है.
If you feel some attraction to the Bodhi, if you feel attraction to the Buddha, well, that's something of enlightenment.
अगर आपको बोधि के तरफ या संबोधि की ओर अगर आपको कुछ आकर्षण है तो वह थोड़ा सा संबोधि का हिस्सा है.
But you need to deepen that.
लेकिन उसे हमें गहरा करना है.
You need to strengthen your faith.
हमारी श्रद्धा को गहरा करना है.
You need to strengthen it to the point at which it becomes direct experience.
इस बिंदु पर हम आने चाहिए जहां हमारा सीधा वह अनुभव होता है.
But the attachment to ego identity is very strong.
लेकिन हमारी स्व की जो पहचान है यह काफी प्रबल है.
And even though you've got a glimpse of enlightenment, still the strong attachment to self.
भले ही हमें संबोधि की छोटी सी झलक मिलती है फिर भी हम स्व से काफी आसक्त होते हैं.
So the question is of getting that out of the way.
तो प्रश्न यह है कि इससे हमें मुक्त होना इससे भेदना है
एंड दैट टेक्स टाइम
और उसके लिए समय लगता है
यू कैन हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ एनलाइटनमेंट अ डायरेक्ट ग्लिम्प्स ऑफ एनलाइटनमेंट
हो सकता है संबोधि की सीधी झलक आपको मिल जाए
बट देन I gets in the way.
लेकिन आपका स्व है वह आड़े आ जाता है.
So then you have to do a lot of work, Shila, Samadhi, Prajna.
तो फिर आपको शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा प्रयास करने होते हैं.
What you're really doing is getting yourself out of the way.
क्या आपको करना है? आप अपने स्व को आपके रास्ते से हटा दीजिए.
And then you can merge with enlightenment.
और फिर आप संबोधि के साथ सम्मिलित या विलीन हो सकते हैं.
This is very basic to our approach, of course.
यह काफी मूलभूत या बुनियादी है हमारे रुख के लिए.
You remember the 12 positive nidanas?
शायद आपको 12 विधायक निदान पता हो.
First of all, leading from dukkha through shraddha to samadhi.
So dukkha से श्रद्धा और फिर वहाँ से समाधि की ओर.
And that is the mundane path.
और वह यानी सांसारिक मार्ग है.
Through karmic effort, you're building the basis.
कर्मों के द्वारा हम उस बुनियाद को बनाते हैं.
And then yathabhuta jnana darshana arises in dependence on samadhi.
और समाधि के आधार पर यथाभूत ज्ञान दर्शन होता है.
And that is stream entry.
और वह श्रोतापन्न की अवस्था है.
You've directly seen the truth.
क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से सत्य को देखते हैं.
To that extent, you could say you're enlightened.
उस हद तक आप कह सकते हैं कि आप संबोधि प्राप्त हैं.
But the habit of self-clinging is still there.
लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति है स्व को आसक्त होने की वो फिर भी वहाँ होती है.
And that has to be worn away.
और उसे हमें निकालना होता है.
And you still have to work.
और इसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है.
Then you go through the remaining stages of the transcendental path.
और फिर आप जो बचे हुए अलौकिक जो मार्ग है वहाँ से आप जाते हैं.
Nibbida, Vairagya, Vimukti and Asra, Vakshaya, Jnana.
Nibbida, Vairagya, Vimukti और Asra, Vakshaya, Jnana.
And then you're free.
और फिर आप मुक्त होते हैं.
Ashravakshaya jnana is the point at which there's no more self-clinging.
Ashravakshaya jnana वह है जहाँ स्वासक्ति नहीं होती.
You remember Bhante explains it in terms of the two gravitational forces.
Bhante इसे दो गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के बारे में बताते हैं.
You've got the gravitational force of the conditioned, in other words, of self.
एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण होता है जो संस्कारित है स्व की ओर जाता है.
You've got the gravitational force of the unconditioned, that is, enlightenment, bodhi.
और ऐसा एक गुरुत्वाकर्षण है जो असंस्कारिता की ओर जाता है, वो संबोधि है या बोधि है.
You've got the earth and you've got the moon.
तो आपके पास पृथ्वी है, आपके पास चांद है.
You're trying to get from here to here.
तो आप हम यहाँ से यानी पृथ्वी से हम चांद की ओर जाने की कोशिश करते हैं.
But when you're at this point, the pull of the earth is still very strong.
लेकिन आप जब यहाँ होते तो फिर भी पृथ्वी की ओर जो खिंचाव होता है वह काफी प्रबल होता है.
So you're dragged back all the time.
तो हमेशा ही आप वापस चले जाते हैं.
You have to make a lot of effort to move forward.
और आपको काफी प्रयास करने होते हैं आगे जाने के लिए.
That's the condition we're in.
तो वह परिस्थिति जहाँ होते हैं.
We make a lot of effort here every morning and then almost immediately we're back where we were.
तो बहुत प्रयास हम यहाँ बैठकर करते और तुरंत हम वहाँ चले जाते जहाँ थे.
You're full of maitri.
आप मैत्री से भरे होते.
And then there's no food in the dish.
और फिर वहाँ खाना नहीं बचा होता है.
Back you go.
तुरंत आप चले जाते.
And so on.
वगैरह वगैरह.
But वगैरह वगैरह. Absolutely correct. And then there's a point at which the gravitational force of the moon, of the unconditioned, gets stronger than the gravitational force of the earth, of the conditioned.
तो कभी कभी फिर एक समय में ऐसा होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण चांद की ओर असंस्कारिता का है वह ज्यादा होता है इसके बजाय जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का होता है संस्कारिता की ओर.
So you now you don't really need to make an effort.
तो जब आप इसकी ओर ज्यादा झुकाव होता है तो आपको ज्यादा प्रयास करने नहीं होते.
You just allow yourself to be pulled to enlightenment.
आप केवल अपने आप को खुले करते हैं संबोधि के प्रति.
If you make an effort, you'll move faster.
अगर आप प्रयास करते हैं तो आप अधिक गतिशील होकर संबोधि की ओर जाते हैं.
So we need to get to that point, the point of stream entry.
तो वह जो बिंदु है श्रोतापन्नता का, उस बिंदु तक हमें जाना होता है.
Then the effort is just natural.
और फिर वहां से जो प्रयास है वह सहज होते हैं.
But it's gradual.
लेकिन यह पायदानों में होता है.
Because still some of that pull of the conditioned is still is there in us.
क्योंकि उसमें जो संस्कारितता का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका अंश बचा हुआ होता है.
And I'm sure we've all experienced that pull.
और हम सब लोग उस खिंचाव को अनुभव करते हैं.
We've also experienced the pull of the unconditioned.
हम जो असंस्कारितता का खिंचाव है उसका भी अनुभव करते हैं.
That's our faith.
वह हमारी श्रद्धा है.
We're called by the Bodhi tree.
जैसे पुकार बोधि वृक्ष से हमें आती है.
We're called by the Buddha.
हम बुद्ध से हमारी पुकार आती है.
But then our ordinary mind starts to talk about shopping and this and that.
लेकिन हमारा जो सर्व सामान्य मन है वो खरीदारी के बारे में सोचता है.
And back we go.
और फिर वापस हम वहाँ चले जाते हैं.
So yes, that's we're still in the point at the point of needing to make a regular effort.
तो उस बिंदु तक जाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होते हैं.
We're effectively going for refuge, not really going for refuge yet.
तो अभी भी हम क्या है कि प्रभावी रूप से शरण गमन जाते हैं, हमारा वास्तविक शरण गमन हुआ नहीं है.
Effective going for refuge means we're making an effective effort to go in the direction of the unconditioned.
प्रभावी शरण गमन वह है जिसे जिसमें हम प्रभावी प्रयास करते हैं बुद्धत्व के शरण गमन के लिए.
And that of course is what we have to keep doing when we go back where we came from.
तो यही हमें अभी करना है जहां से हम आए हैं वहां जब जाएंगे.
थैंक यू. नमो बुद्धाय. जय भीम.